ओम शांति।
गोपियों की चरित्र गाथा। एक रात वृंदावन में एक चोर घुस जाता है और उसने सुना होता है गोकुल में बहुत धन है। जो ग्वाले और ग्वालिन है वो बड़े ही समृद्ध है। एक एक घर में घुसता है और देखता है यहाँ सबसे मूल्यवान क्या होगा, और ढूंढ ढूंढ के उसे पता चलता है कि हर एक ने कुछ तो ऊपर रखा हुआ है, और सोचता है इसमें ज़रूर धन होगा, कोई पोटली वहाँ से ले लेता है। जहाँ जहाँ भी छिपा छिपा के जो जो रखा था, कोई झोली, कोई पोटली, कोई संदूक, ऐसी हर चीज़ को रात में लेता है। अलग अलग गोपियों के घर में जाता है और बहुत अच्छा चोरी का माल लेकर चुपचाप निकल जाता है। उसे लगता है सफल हुई चोरी, और जंगल में जाता है और सामान रखता है, सोचता है कल सुबह देखूंगा आराम से, और सो जाता है। दूसरे दिन उठता है और वो सारा जो सामान उसने लाया था वो एक एक खोलता है। एक पोटली खोलता है पहले, उसके अंदर एक दूसरी पोटली, उसको खोलता है, उसके अंदर तीसरी पोटली, उसको खोलता है, एक छोटी सी डिब्बी, उसको खोलता है, उसमें एक पंख का टुकड़ा, कहते हैं। फिर दूसरी झोली खोलता है, उसको और खोलता है, उसके अंदर दूसरी झोली और झोली और झोली, उसमें एक कपड़ा पीले रंग का, पीतांबर का टुकड़ा, कहते हैं ये क्या है। तीसरा खोलता है, संदूक खोलता है और खोलता है, उसके अंदर छोटी संदूक और छोटी और छोटी, और उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा। वो आश्चर्यचकित होता है, ये कैसे पागल लोग हैं, इतना छिपा के इन्होंने ये वस्तुएं रखी है। सोचता है और कुछ होगा, और खोलता है और खोलता है और खोलता है, तो उसमें छोटा सा एक मुकुट का टुकड़ा, इतू सा। उसका वो क्या करे, उसको लगता है मूर्खता हो गई, ये सब वापस दे देना चाहिए उनको, कुछ भी नहीं है इनके पास, झूठ सुना था मैंने। और वो वापस जब सुबह सुबह जाता है गोकुल में, देखता है सारी गोपियाँ आपस में हलचल में है, अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये लूट गया, मेरा वो लूट गया। कहता है क्या लूट गया, मैं ही वो चोर हूँ। तो वो सारी गोपियाँ कहती है अच्छा तुम वो चोर हो, अपने अपने बैगन निकाल के ये लो, ये ले लो, और हमारे वो वस्तु दे दो, हमारा पंख दे दो, ये लो आभूषण ले लो, और मेरा वो दे दो, वो टुकड़ा दे दो लकड़ी का। वो कहता है ये तो महापागल लोग हैं सारे, बहुमूल्य चीज़ें दे रही है, तुम कितने अच्छे चोर हो, ये ले लो और मेरा वो दे दो, सब अपने आभूषण उसको दे रही है। वो कहता है ये है क्या, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, इतना इसका क्या मूल्य है। तब गोपिया कहती है एक समय था जब कृष्ण यहाँ थे, और हमने उसके साथ रास खेली थी, और वो हम सब का प्रियकर था, और वो यहाँ से चला गया और अभी कभी नहीं आएगा वापस, और ये सारी वस्तुएं जो है उसकी यादगार है। किसी ने उसका पंख रखा है, किसी ने उसकी बांसुरी का लकड़ी का टुकड़ा रखा है, किसी ने उसके पीतांबर का टुकड़ा रखा है, किसी ने उसने मुकुट का टुकड़ा रखा है, हर एक के पास कुछ ना कुछ यादगार है। और वो कहने लगे कि बस अब हम इसी के सहारे जीवन बिता रहे हैं। तो शास्त्रों में परमात्मा प्रेम के लिए सर्वोच्च प्रेम किनका गिना जाता है, गोपियों का। भक्ति पांच प्रकार की है, उसमें गोपियों की भक्ति को मधुरा भक्ति कहा जाता है, जिसमें परमात्मा पुरुष है और हम स्त्री, वो माशुक अमाशिक। पहली भक्ति है शांत भक्ति, जिसमें वो सृष्टि करता है और हम सब उसकी संतान है। दूसरी भक्ति है वात्सल्य भक्ति, जिसमें हम भगवान को अपना पुत्र समझते हैं, यशोदा और कृष्ण, या कौशल्या और राम। तीसरी भक्ति है दास्य भक्ति, राम और हनुमान की भक्ति। हनुमान कहता है मैं तुम्हारा दास हूं। निज मनु मुकुर सुधार, वो कहता है मैं दास हूं, इटर्नल सर्वेंट। और यहां तक कि आप अगर इस्कॉन के लिटरेचर को स्टडी करो तो वो लोग कहते हैं दासानुदास, कृष्ण के जो दास है उसके हम दास हैं, उसे कहते हैं दास्य भक्ति। चौथी भक्ति है सखा भक्ति, जिसमें भगवान को हम अपना मित्र बनाते हैं, अर्जुन या सुदामा का उदाहरण दिया जाता है। और पांचवी भक्ति है मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति अर्थात वो हमारा पति है, हमारा प्रेमी है, हम उसके बिना अपूर्ण हैं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द ब्राइड्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम, द ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट का गायन है। हम सब जितनी नंस होती है ना चर्चेस में, वो सब कौन है? ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट, उस क्राइस्ट की दुल्हन है वो सारी। मुरलियों में आता है नन, नन बट वन, नन है वो सब। तो उन पांचों प्रकार के भक्ति में एक भक्ति जो है वो है मधुरा भक्ति, जो गोपियों ने की थी, जिनकी भक्ति का कोई उद्धव आता है तो उसको समझ ही नहीं आता है करूँ क्या। वो उनको ज्ञान सुनाने लगता है कि जिसको तुम कृष्ण समझ रही हो वो परमात्मा है, वो भगवान है, पर उनको तो सुनने को ही तैयार नहीं। वो कहते हैं ना ना, हम तो यहाँ रास करते थे, यहाँ हम खेलते थे। वो कितना उनको तर्क की और शास्त्रों की बातें सुनाता है पर वो सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी। और आखिरकार वो उद्धव भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास तो ज्ञान की गर्मी थी पर यहाँ तो प्रेम की आग थी। आप सबसे हम एक बात स्टडी करने को कहेंगे, गोपिका गीतम, भागवत में गोपिका गीतम है, उसका एक बार स्टडी करना, उसका संस्कृत और हिंदी पूरा गोपियों का गीत है एक, वो पूरा हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। वो आत्मा की पुकार है उस परमात्मा के लिए। और उसकी एक लाइन तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि हे गोविंद, हे प्रभु, तेरी जो कथा है क्या है? अमृत है। तव कथामृतम, तेरी कथा अमृत के समान है। हमारा जीवन तप रहा है, हम विकारों में हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, उसमें अमृत की बूंदे हैं जैसे तेरी कहानियां, तेरी वाणी। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबीरिडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। केवल सुनने मात्र से कल्याण होता है, जिसका योगियों ने, तपस्वियों ने गायन किया है। श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ही उद्धार होता है आत्मा का। विषय इतने काले हैं, कल्मषापहम, हमारे चरित्र में दाग लगे हैं, कलमश, कलंकित है हम। श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, धन्य है वो लोग जो तेरी वाणी दूसरों तक पहुंचाते हैं, धन्य है वो आत्माएं जिनके मुखारविंद से तेरा नाम निकलता है। यहां तक कि राम के लिए तो कहते हैं राम तारे ना तारे, उसका नाम उससे भी बड़ा है, ऐसा ही मानते हैं ना, उससे भी बड़ा उसका नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलयुग में केवल नाम नाम ही आधार है, ऐसा कहा जाता है। तो गोपियों के चरित्र में प्रभु प्रेम समाया हुआ है, और इस प्रभु प्रेम की आठ बातें आज हम देखेंगे। ये प्रेम कैसा हो? सबसे पहला प्रभु प्रेम में है विरह वेदना। सबसे पहली बात कौन सी है? विरह की आग, कि मैं क्यों उससे नहीं मिल पा रहा। हमारे अंदर जो दर्द है वास्तव में रियल दर्द है कि हम उससे दूर है, पर हम ही भूले। सारे मनुष्य जो चाहना है उनके अंदर वो है प्रभु मिलन की चाहना, पर वो उन्हें पता नहीं कौन सी है, इसलिए शरीर के तल पर वो उसको पूरा करते हैं। विरह, विरह अर्थात विरह क्या होता है? बिछोह क्या होता है? बिछोह, ये शब्द सुना है क्या? पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पीड़ा होती है उसमें, दर्द होता है, दर्द, उस दर्द का अनुभव करना है कि हम उससे दूर है, क्यों उससे दूर है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ का, भोजन भवन भलो नहीं लागे। मीरा कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है यहाँ का, ना भोजन अच्छा लगता है ना यहाँ का भवन अच्छा लगता है, मुझे केवल वो अच्छा लगता है। वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे, उससे मैं दूर क्यों चला जाता हूँ, ये प्रश्न है। हम बाबा के से दूर कहाँ भटक जाते हैं, उसमें वो रस क्यों नहीं आता है? वो रस का सागर है, वो स्वाद का सागर है। कई लोग ऐसा कहते, भक्ति मार्ग में हम बहुत रोते थे भगवान के लिए, जब से ज्ञान में आए रोना बंद हो गया, आंसू ही सूख गए। भक्ति मार्ग में अनुभव होते थे, ज्ञान में जीरो, यहां कुछ भी नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका एक कारण है बोर्डम, वही 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 रिपीट हो रहा है, वही शब्द है, शब्दों को बदलना है। मन की कमेंट्री बदलनी है, उसमें कोई नवीनता आए तो ही वो प्रभु प्रेम मेंटेन रहेगा। सेवाओं में इतना व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए कि भूल ही गए किसके लिए सेवा कर रहे हो और किसकी सेवा कर रहे और उसका लक्ष्य क्या है। तो अपने भीतर फिर से वही विरह अग्नि, वही प्रेम जागृत करना है। हमें याद है जब हम छोटे थे, छोटे अर्थात ट्वेल्थ के बाद, जब अपने भाई के पास थे और पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहे थे, एक तीन दिन ऐसे आए थे जीवन में जब ईश्वरीय प्रेम और वेदना इतना चरम पे चला गया था वो, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या, कंटिन्यूअस आंसू आंसू बह रहे हैं नॉन स्टॉप। हमें यहाँ का कुछ पता नहीं था, परंतु वो आंसू इतने जबरदस्त थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे अभी हम मर जाएंगे। हे कृष्ण 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 कृष्ण, यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए। एक आग, ऐसी आग जैसे जलन हो रही है अंदर, पूरा शरीर जल रहा है। अब किसको बताएं, वहां कोई भी नहीं था, भाई था, वो अपना पढ़ाई कर रहा था, सेकंड MBBS उसके कमरे में थे, आग आग लगी थी पूरे शरीर में आग। विरह वेदना, वेदना तब अनुभव हुआ था कि ये जो भक्त थे इनको ऐसी वेदना होती थी, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ादायक, और वो पीड़ा एक अलग प्रकार की पीड़ा थी, संसार की पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था शरीर में, पर आग थी, आग कि वो क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे यहां का कुछ भी नहीं चाहिए। और उस पीड़ा के बाद ही वो पूरा लंबा चला बहुत, ये 3 दिन तो बहुत ज्यादा चले थे एक बार, पर वो पूरा काल 7-8 मास चला था। उसके बाद में शांतिवन में बाबा से मिलन हुआ था। तो सबसे पहला क्या है? विरह वेदना, प्रभु प्रेम में। दूसरी जो चीज होती है वो है व्याकुलता, बेचैनी। वो वाली व्याकुलता नहीं जो संसार के लोगों को होती है, वैसी नहीं, डिवाइन रेस्टलेसनेस, बेचैन बेचैन होता है, अजीब प्रकार की बेचैनी। और वो किसी भी संसारी चीज से शांत नहीं होती है। हाँ, किसी गीत से थोड़े देर के लिए शांत हो जाती है। कोई भक्ति का गीत या कोई ज्ञान का गीत, पर वो एक सूक्ष्म बेचैनी हमारे अंदर हो कि हमें लंबे समय तक अशरीरीपन का अनुभव हो, ये नहीं हो रहा है उसकी बेचैनी हो। क्यों वापस वापस शरीर में आना पड़ता है, फिर ये सब बाधा लगने लगता है, पर ये संघर्ष होता रहे। दो प्रकार, अंदर और बाहर, एक संघर्ष, सूक्ष्म संघर्ष, ये होता ही रहे, और होना अच्छी बात भी है, नहीं तो हम संसार में खो जाते हैं। तीसरा है धुन, एक धुन लग जाए। धुन इज ऑब्सेशन, इंग्लिश में कहते हैं जुनून, कि क्या करूं क्या करूं, एक ही धुन एक ही धुन एक ही धुन। जैसे अमृत बरस रहा है, अमृत वेला, मधुबन में जो दूसरा सबसे अधिक अनुभव हमने जो किया है वो सुबह का है, कुटिया में या शांति स्तंभ पर, 2 से 4, 4:30 तक, 4:30 बजे हम निकल जाते हैं वहाँ से और चिंतन करते हैं मुरली का, 2-2.5 घंटा योग के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर थोड़ा सा चिंतन की क्वालिटी कम हो जाती है, और कई बार 5 बजे क्लास होती है तो उससे संबंधित भी कुछ पढ़ना होता है, या अगर दूसरे करा रहे हैं तो उनको सुनना, वो किस मुरली को वो लोग रिवाइज कर रहे हैं उसको हमें पहले पढ़नी होती है। तो वो जो समय है 1:45 या 1:30 सुबह का, वो बहुत पावरफुल उसमें एक्सपीरियंस होते हैं, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसको क्या बताए किसको, उसमें शरीर है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है। बहुत बार, ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट डेली। तो तीसरा बताया क्या? धुन। चौथा ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद का भाव, जो भी जीवन में हो रहा है उसके प्रति धन्यवाद, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हमें हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है, उन सब के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद। पांचवा है रति। रति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम। ये 4 शब्द है, ये लिख के रखो अपनी डायरी में और इसका अर्थ आप ढूंढना। प्रेम, प्यार, स्नेह और प्रीत, इनमें क्या अंतर है? स्नेह, प्यार, प्रेम, प्रीत, और हम जो शब्द कह रहे हैं वो तो अलग ही कह रहे हैं। रति, रति अर्थात ईश्वरीय प्रेम की भी पराकाष्ठा कहा जाता है उसको, तीव्र प्रेम उस एक के प्रति। वो होमवर्क है आपका, वो 4 शब्द, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसमें उर्दू वाले शब्द नहीं लाना है, मोहब्बत, उल्फत, इश्क, ये अलग ही शब्द है, वो अलग। ये 4 हिंदी है और हिंदी के अलग अलग अर्थ है। प्रेम अलग है, स्नेह अलग है, प्रीत अलग है, प्यार अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिक्शनरी में ढूंढो सब एक ही है, शब्दकोश में, पर अंतर सूक्ष्म है, वो आप खुद ही चिंतन करना है इसका। तो हम कहाँ थे, रति। ईश्वरीय प्रेम बढ़ता जाए, हर दिन बढ़ता जाए। लखनऊ वालों को कहा ना संडे की मुरली में, स्पीड बढ़ाओ, तो प्रेम की भी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड प्रेम देखना है हमारा, किस किस चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्नेह है संसार के, क्या हमको चाहिए, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, एक्नॉलेजमेंट, सुंदर चेहरा, बाल, कुछ भी हो सकता है, सेंटर, घर, रिट्रीट सेंटर, जगह, कंफर्ट्स, सब कुछ लिखना एक तरफ, और फिर मुझे क्या करना है, ऐश्वर्य प्रेम एक तरफ, और ये सारा जिनके पास है, क्या वो शांत है, वो भी तो बेचैन ही है। अगला है विश्वास, एतबार, फेथ, यकीन, ईमान, निश्चय, उस एक पर निश्चय, उस एक पर निश्चय। 10 समर्पण सूत्र हैं, शायद आपने सुने होंगे, हम लोगों ने क्लासों में कई बार इसको कराया है, ऐसे 10 समर्पण सूत्र है, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सुखदेव, एक सिंगल प्रिंट आउट। तो पहला सूत्र है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पहला समर्पण सूत्र है, लिखना नहीं है पहले सुन लो, बाद में आपको लगा देंगे वहाँ से लिख लेना। दूसरा सूत्र है, एक से सर्व संबंध। तीसरा सूत्र है, एक के प्रति समर्पण भाव। चौथा सूत्र है, एक की, एक से प्यार, एक का संग, एक की याद, एक से रू रिहान, एक बल, एक भरोसा, एक के साथ सारे कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। कितने हो गए ये, 10। तो इसको एक्शन सहित करते हैं हम लोग।
ये जो आपने बताए हैं कि धुन या प्रेम, ये तो हम सबको पता है, पर हम बढ़ाएं कैसे? वो जो आग आप सुना रहे हो, हम पैदा कैसे करें? क्योंकि आपने भक्ति किया है, हमने तो भक्ति किया नहीं, तो विरह वेदना हमको उत्पन्न कैसे हो? और
होगी
वो जो भक्ति,
आत्मा में वो प्यास पहले से ही है, वो नहीं उत्पन्न हो रही है, उसका कारण है उस तीव्र वैराग की कमी, वो ही खो गया है और सब तरफ खो गया है, सेवाओं ने उसे थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है,
जैसे आपने कल बताया था कि
इसलिए कहा कि हमने जो बात कही थी, एकांत और मौन और प्रकृति और चिंतन, इन सब से वो आग तीव्र होती है।
वैसे आपने कहा था कि कल बताया था ना कि जो नशा छोड़ने वाले हैं वो 3 महीने बाद 3 महीने छोड़ के आते हैं, लेकिन जितने आते हैं उसी दिन शुरू कर देते हैं। तो
हाँ,
हम सबके भी संस्कार परिवर्तन, हम सोचते हैं कि
वो भी
नहीं
वैसा ही है।
वैसा ही है, तो उसको हम परमानेंट कैसे करें? जैसे अब आपने भट्टी कराया, बिल्कुल किसी का फोन की तरफ ना किसी का बजा है ना किसी का मन जा रहा है, लेकिन अभी जैसे यहाँ से जाएंगे तो ना चाहते हुए भी रास्ते में ही सोचेंगे 2 दिन से तो यूज नहीं किया है, तो वो शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, कब उसमें पूरा लीन हो जाते हैं। तो कुछ
इसलिए
ऐसा
रोज इंटरमिटेंट साइलेंस, बीच बीच में मौन, बीच बीच में एकांत और बीच बीच में प्रकृति का सानिध्य, वो ये 2-3 चीज़ें रोज होनी चाहिए। अगर ये नहीं किया तो ये भट्टी में आना बैठना, ये केवल कनरस, वाणी विलास, बुद्धि विलास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर एक को एक तो अपना मार्ग खुद ढूंढना है।
हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी कि जैसे यहाँ पे सब ज़्यादातर जो है इनके इनके जो बड़े हैं वो तो नहीं आए हैं, इनका किस में इंटरेस्ट है, उनका किस में इंटरेस्ट है, ये कई बार मैच नहीं करता। तो मान लो कि उनको उस तरह से चिंतन या मतलब प्रकृति या एकांत का समय ना मिले, तो वो कैसे अपने उस चीज़ को मेंटेन करके रखें? क्योंकि कई बार जैसे इनको चिंतन अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं इसमें टाइम वेस्ट, सुबह बोली सुन लिया था, या अरे चलते फिरते कर सकते, खाना बनाने बनाते भी कर सकते हैं, तो उसमें कैसे हम इस
हरेक
चीज़ को
को
मेंटेन करना है।
पहले कहा अपना मार्ग खुद ढूंढना होगा। हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी है। आप उन लोगों के बीच में हो सकते हैं जिनके विचार आपके विचारों से नहीं मिलते हैं। उनके विचार ज्ञानी योगी वालों के ही सबके विचार अलग अलग है। विचारधाराएं विपरीत दिशा में बह रही है। किसी को केवल वीआईपी सेवाओं में इंटरेस्ट है, किसी को सेवा में ही इंटरेस्ट है, बाकी ज्ञान योग धारणा में इंटरेस्ट नहीं। किसी किसी को केवल मुरली में इंटरेस्ट है, बाकी और कुछ भी सोचना करना पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को किसी को केवल योग में इंटरेस्ट है, केवल योग, और वही वाला जो अब तक करते आ रहे हैं, मैं आत्मा हूँ वही, उसमें कोई नवीनता नहीं। तो और कोई कोई है वो ज्ञान योग धारणा और सेवा से मुक्त है, वो सब कर लिया है हमने। हम जब आए थे तब ये सब किया, अभी ये सब दूर हो गया है, ये सब से बुद्धि निकल गई है, वो कोई और ही लगा है, कोई पैसों में फंसा है, कोई वीआईपीज में फंसा है, कोई विदेश जाने के चक्कर में है, कोई सम्मान के पीछे, कोई पद के पीछे, पोस्ट के पीछे, कोई चाटुकारिता में लगा है अपने बड़ों प्लेटरी बटर बटर फैक्ट्री बटर फैक्ट्री, उनकी तारीफ करते रहो करते रहो, टू बी इन देयर गुड बुक्स, कोई उसमें लगा हुआ है। सब अलग अलग इसमें बटे हुए हैं, कोई कुछ अफेयर्स में लगा हुआ है, एक बहन को एक भाई अच्छा लगता है, बातें करते रहते हैं, प्राइवेट कॉल, चैट, वीडियो कॉल, कोई ये सब छोड़ के मीडिया में लगा हुआ है, कोई मूवीज़ में लगा हुआ है, कोई अपने चैनल में लगा हुआ है, रील्स बनाने में लगा है, सबके अलग 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 अलग। अब इतनी ऐसी परिस्थितियों में, और हम जो ये बातें कर रहे हैं ये तो अजीब ही बातें हैं सारी, अजीबो गरीब। इसका कोई यही नहीं लग रहा है कि इसको यहाँ कैसे लाए, परंतु सत्य तो यही है, ये तो सबको ही पता है, और ये सब मुरलियों में आया है, और यही करना भी है, पर वो हो नहीं रहा है वो एक अलग बात है। आप यहाँ हैं, आपको क्या लगता है हम जहाँ हैं वहाँ कैसा वातावरण है? वहाँ तो अलग ही है, यहाँ एक पार्टी होती है, वहाँ तो 10 पार्टियाँ होती है। फिर जिसको करना है वो करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, और जिसको ढूंढना है वो ढूंढेगा। नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड ई शैल फाइंड, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। बाइबल में लिखा है खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, ढूंढो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। ये खुद की यात्रा है, अपनी यात्रा है, इसलिए आप जिस भी परिस्थितियों में, जैसे भी परिस्थितियों में, उसी परिस्थिति में रहकर मार्ग को ढूंढना है कि ये तो करना ही है, बस कैसे करना है वो पता नहीं पर करना तो है। तो हमने 10 सूत्र बताए थे, तो इसको अभी हम एक्शन सहित करेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, करेंगे ऐसे नहीं बैठना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये ऐसे काटना है, इसको थोड़ा दूर चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक का संग, एक का संग, एक का संग, एक का संग, एक से प्यार, एक से प्यार, एक से प्यार। अगला क्या था? एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से रूरियान, एक से रूरियान, एक से रूरियान, एक के साथ सारे कर्तव्य, एक के साथ सारे कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक मैं ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक मैं ही सब कुछ। तो इसको क्या कहा जाता है? 10 समर्पण सूत्र। इसको बाहर लगा देंगे, सुना चुके हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है, तो ये टॉपिक रह जाएगा। कल सुनाएंगे सुबह, ये पहले से ही गोपी का है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। किस पॉइंट पर थे हम? 6th पॉइंट क्या था? विश्वास, निश्चय। इफ ई हैव फेथ एंड इफ ई ऑर्डर द माउंटेन, गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड इट शैल बी डन। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है और तुम उस पर्वत को कहो, हे पर्वत उठ, जाकर समुद्र में गिर, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। परंतु ये होगा तब जब तुम्हें विश्वास है। तो स्वामी विवेकानंद अपने एक लेक्चर में अमेरिका में ये बाइबल का वाक्य कहते हैं। एक माता, अमेरिकन माता, बूढ़ी माता, ये वाक्य सुनती है, अपने घर में जाती है, खिड़की खोलती है, खिड़की के सामने पर्वत होता है, और उस पर्वत से कहती है, हे पर्वत उठ, जाकर समुद्र में गिर, और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ और ये मेरा विश्वास है। खिड़की बंद करती है, सो जाती है। दूसरे दिन उठती है एक्साइटमेंट के साथ कि माउंटेन गायब हो गया होगा। खिड़की खोलती है, पर्वत वहीं है। वो कहती है, मुझे पहले से ही पता था। मुझे पहले से ही पता था। तो फेथ में बहुत पावर है, बहुत। ये माताएं जो होती है, उनको ज्ञान कितना समझ में आता है? उनको पूछो द्वापर में कितने जन्म होते हैं। उनको कुछ नहीं पता रहता है, पर हम देखते हैं माउंट में, हॉस्पिटल में आती है माता है, इतना उनका फेथ, उनके सामने तो नतमस्तक ही होना पड़ता है। इतना हाई ग्रेड बुखार, उसको कहते हैं भर्ती हो जाओ, कहती है नहीं, भर्ती नहीं होंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, 150 रुपये है वो जाने की टिकट के लिए रखे हुए है, और बाबा के ऊपर बोझ होगा, मैं यहाँ सेवा के लिए आई हूँ, सबको पता चलेगा तो क्या कहेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें बताती। हम कहते हैं नहीं, 102 बुखार है, 103 बुखार है, एडमिट हो जाओ, नहीं होती है, फिर भी ज़बरदस्ती फिर उसको फ्री करो, कहते मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, एडमिट करते हैं जनरल वार्ड में, कांपती रहती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी ठंड होती है, कहती भी नहीं कि हीटर दो या वो दो, सब उसको दो, रिपोर्ट्स कराते हैं, रिपोर्ट्स में सारा गड़बड़, उसको कहते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा 2 दिन, वो कहती है नहीं, मैं मुझे बहुत ठीक लग रहा है, दूसरे दिन मुझे आज ही जाना है, अभी के अभी भेजो, फिर भी ज़बरदस्ती रखते हैं, कुछ और जांचें कराते हैं, और ठीक होते हैं, फिर जो जाती है तो कभी आती नहीं वापस, कभी दिखती नहीं, उसी समय एक दूसरा एडमिट होता है, सो कॉल्ड VIP, जो आते हैं ओपीडी में, रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा, थकान थकान सी लगती है, थकान थकान लगती है, एक बार रिपोर्ट जरा देख लेना, रिपोर्ट देख लिया सारे नॉर्मल है, अरे एकदम उदासी छा जाती है, जैसे ही कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल, रिपोर्ट नॉर्मल और हम इतने बीमार, वो कहते एक बार भर्ती कर लो, देख भर्ती की ज़रूरत नहीं है, वो कहते नहीं, कर ही लो एक बार, फिर VIP रूम में एडमिट हो जाते हैं, फिर उनको मिलने वाले हजारों लोग, गिफ्ट लेके आने वाले, और फिर दूसरे दिन जाओ तो कहते हैं वो भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, वो कहते हैं ये हीटर काम नहीं कर रहा है ठीक से, सीधा मेडिकल डायरेक्टर को फ़ोन, ये ज़रा कुछ करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बिस्तर ज़रा चेंज कराओ, वो बेचारी बेचारी नीचे माता कहती है मेरे को जल्दी छुट्टी करो, उसको कहते सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वो कहती नहीं, बाबा के ऊपर बोझ हो रहा है, मेरी सेवा रह रही है। इधर 4-5 दिन ये रहते हैं VIP, फिर हम कहते छुट्टी, छुट्टी का नाम लेते ही नहीं, अभी तो यहाँ भी दर्द है, अभी थोड़ा पंचकर्मा थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, अभी तो कहाँ, अभी तो कमजोरी इतनी ज्यादा है, चल भी नहीं पाते, सांस फूलती है चलते तो। भोजन ये वाला नहीं वो वाला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, स्पेशल मेनू, और वो सब होता है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी होती है, फिर और दो तीन जगह और जाके चेक कराते हैं, और बड़े बड़े जगह पर, वो सब भी नॉर्मली निकलता है उसमें, 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, और उधर वो एक माता है जिसके पास पाई पाई का हिसाब है, जिसको चिंता है इस यज्ञ की, जो अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहती, बोझ लगता है उसको। तो विश्वास, फेथ, निश्चय, इन सुख सुविधाओं ने हमारे निश्चय को चुरा लिया है। इतनी आराम, इतनी सुविधा, इतना सब कुछ, ये नहीं कि ये ना हो, पर ये होते हुए भी मन विरक्त हो भीतर से, है तो ठीक, कल कुछ नहीं रहेगा तो भी ठीक। अगला है समर्पण। प्रभु प्रेम का सातवां सूत्र कौन सा है? पूर्ण समर्पण, उसके प्रति अर्पित कर देना। वो जो उसको जहाँ रखना है उसको तो पता है ना, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम भूले हुए हैं, पर वो तो नहीं भूला। टोटल सरेंडर, और लास्ट है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता, उसे वैसे ऐसे बच्चे बहुत प्रिय है जो पवित्र है, उसे वो अधिक प्रिय नहीं है जो बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो ये कितनी बातें हो गई? आठ। सबसे पहली बताई विरह, विरह की आग, विरह की अग्नि। दूसरा बेचैनी, पर कैसी बेचैनी? दिव्य बेचैनी, डिवाइन रेस्टलेसनेस, अलौकिक बेचैनी, सिंपल वाली नहीं, संसार वाली नहीं, संसार के लोग भी बेचैन होते हैं पर वो वाली बेचैनी नहीं है ये, वास्तव में ये बेचैनी संसार के लोग समझ ही नहीं पाते। तीसरा धुन, एक सिंगल थॉट और उसकी एक धुन लग जाए, वही 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 वही, रिपीट 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 रिपीट। जब हम आए थे ज्ञान में 2003 में, सबसे पहला ये स्ट्रेस था, ये टेंशन था कि हमको बहुत लेट हो गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, इतनी बेचैनी थी इसी एक बात की कि बहुत लेट हो गया, हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ थे ना कुछ थे। जो उस समय आए थे हॉस्पिटल में, पहली जो सैलरी मिली थी 7,000 रुपये, वो लिटरेचर डिपार्टमेंट में गए और उसको कहा कि 69 से लेके तो 2003 तक की जितनी अव्यक्तवाणी है वो सारी मुझे चाहिए। वो सबको खरीदा, वो पांडव भवन से जो बस निकलती है हॉस्पिटल होके ज्ञान सरोवर जाती है, उसमें बैठे, और फिर ऐसा था कि अब मैं इसका क्या करूं। ये आग वहां वहां से थी कि इसका मैं क्या करूं। पहले तो दुख था, बहुत अधिक दुख, बहुत अधिक, और मुझे एक दुख और भी था कि मुझे पुरुष क्यों बनाया है, ये बहने अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता, सेंटरों पे होता तो फिर मुरली वगैरह पड़ता। ये मुझे बहुत 3-4 साल तक एक दुख चला, ये फिर थोड़ा सा इस दुख से बाहर निकला कि मुझे वो करना है जो ये लोग करते हैं, ये लोग इतना अच्छा करते मैं क्यों नहीं करूं, इसमें मुझे तो ये जॉब और ये सब, ये सेवा, ये मेडिकल करना ही नहीं है, इसमें नीचे आना पड़ता है अवस्था से, उस आत्मा की अवस्था से इसमें नीचे, पेशेंट देखो, फिर उसको पूछो क्या तकलीफ है बताओ, कमर दर्द, पेट दर्द, ये दर्द वो दर्द, फिर उसको एग्जामिन करो, उसको हाथ लगाओ। हाँ, पर ये इन इनमें भी मुझे रस तो था, तब भी सेवा में, सेवा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षण था, भक्ति के संस्कार थे सेवा के, इसलिए वो एक द्वंद्व ही रहा, एक तरफ मेडिकल एक तरफ अध्यात्म, ये दो, टू बी और नॉट टू बी, व्हाट दैट इज द क्वेश्चंस, ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, ये हमेशा रहा। अगला, ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद बार बार उसके प्रति, जो भी मिला जो भी हुआ, बहुत अच्छा। अगला, रति अर्थात प्रेम, प्रेम की बड़ी उच्ची अवस्था को रति कहा जाता है। अगला, विश्वास, निश्चय, फेथ, एतबार, ईमान, अलग अलग शब्द है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्द है। अगला, समर्पण, तो इसमें हमने ये 10 समर्पण सूत्र देखे, कौन से थे वो, क्या थे, पढ़ो। मेरा तो एक, एक्शन के साथ करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, दूसरा एक से सर्व संबंध, तीसरा एक की याद, अगला और क्या है, एक के प्रति समर्पण भाव, और आगे पढ़ते जाओ, एक से प्यार, अगला एक का संग, और देखते जाओ, एक बार उसे कहाँ चले गए, उसके पहले हैं कुछ, एक से प्यार, एक की याद, एक भरोसा, अगला, चलो छोड़ो, एक बार कर लेते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक भरोसा नहीं, एक का संग, एक का संग, एक से प्यार, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से रूरिहान, एक से रूरिहान, एक से रूरिहान, उसके बाद में एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, और लास्ट, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। तो ये है 10 समर्पण सूत्र, तो ये आप भी करना और आपके स्टूडेंट्स को भी कराना, तो उनको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो ये आज का टॉपिक और यहाँ पूरा होता है।